ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्तर गीता। उत्तर गीता महाभारत के आश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता नामक उप पर्व में मिलती है। लघुकाय होते हुए भी तात्विक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता रूपी जो ज्ञानोपदेश दिया था, उसका कालांतर में अर्जुन को विस्मरण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने भी योग युक्त होकर व्यक्त किए गए उस ज्ञान का पुनः पूरा पूरा स्मरण असंभव ही बताया, परंतु अर्जुन के कल्याणार्थ उत्तम गति प्रदान करने में सक्षम उसी परमात्म तत्व को भिन्न रूप से वर्णित किया, उसी को उत्तर गीता कहते हैं। जीव को शुभ अशुभ सभी कर्मों का अवश्य फल भोगना पड़ता है, अतएव सत्कर्म ही करें। ऐसी प्रेरणा देने के साथ ही जीव की विभिन्न गतियां तथा मोक्ष प्राप्ति के उपायों का वर्णन भी इसमें किया गया है। यही सारगर्भित तथा सुबोध तात्विक विवेचन युक्त उत्तर गीता यहां प्रस्तुत की जा रही है। पहला अध्याय। अर्जुन का श्री कृष्ण से गीता का विषय पूछना और श्री कृष्ण का अर्जुन से सिद्ध महर्षि एवं काश्यप का संवाद सुनाना। जन्मेजय वाच सभायां वसतोस्तत्र निहत्यारीन महात्मनोः केशवार्जुनयोः कानु कथा संभवद द्विज। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, शत्रुओं का नाश करके जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा भवन में रहने लगे, उन दिनों उन दोनों में क्या क्या बातचीत हुई? वैशंपायन उवाच कृष्णेन सहितः पार्थः स्वराज्यं प्राप्य केवलं तस्यां सभायां दिव्यायां विजहार मुदा युतः। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब केवल अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया, तब वे उस दिव्य सभा भवन में आनंदपूर्वक रहने लगे। तत्र कंचित सभोद्देशं स्वर्गोद्देश समम नृप यद्रच्छया तौ मुदितौ जगमतुह स्वजनावर्तौ। नरेश्वर, एक दिन वहाँ स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घामते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुँचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। ततः प्रतीतः कृष्णेन सहितः पांडवो अर्जुनः निरीक्षताम सभाम रम्यामिदं वचनं ब्रवीत। पांडुनंदन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, विदितं मे महाबाहो संग्रामे समुपस्थिते महात्मयं देवकी मातस्तच्यते रूपमैश्वरम। महाबाहो देवकी नंदन, जब संग्राम का समय उपस्थित था, उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। यत तद भगवता प्रोक्तम पुरा केशव सौहृदात तत सर्वे पुरुष व्याघ्र नष्टम में भ्रष्ट चेतसः। परंतु केशव, आपने सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया है, भूल गया है। मम कौतूहलम त्वस्ति तेष्वर्थेषु पुनः पुनः भवांस्तु द्वारकां गन्ता नचिरादिव माधव। माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बारंबार उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन उवाच एवमुक्तस्तु तम कृष्णः फाल्गुगम प्रत्यभाषत परिष्वज्य महातेजा वचनं वदतां वरः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। वासुदेव उवाच श्रावितस्त्वं मया गुह्यं ज्ञापितश्च सनातनं धर्मं स्वरूपिणं पार्थ सर्वलोकांश्च शाश्वतान अबुद्धया नाग्रहीर यस्त्वं तन्मे सुमहद प्रियं न च साध्य पुनर्भूयः स्मृतिर्मे संभविष्यति। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण करते हुए संपूर्ण नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह मुझे बहुत अप्रिय है। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। नूनम श्रद्धानो असी दुर्भेदा ह्यसी पांडव न च शक्यम पुनर्वक्तुम शेषेण धनंजय। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है। धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता। सही धर्म है सुपर्याप्तु ब्राह्मण पदवेदने न शक्यम तन्मया भूयस्तथा वक्तुम शेषतः, क्योंकि वह धर्म ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था। वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात भी नहीं है। परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया इतिहासम तु वक्ष्यामि तस्मिन्नर्थे पुरातनम। उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब उस विषय का ज्ञान कराने के लिए मैं एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। यथा ताम बुद्धिमास्थाय गतिमग्रयाम गमिष्यसी शृणु धर्म भ्रताम श्रेष्ठ गदितम सर्वमेव मे। जिससे तुम उस समत्व बुद्धि का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त कर लोगे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ अर्जुन, अब तुम मेरी सारी बातें ध्यान देकर सुनो। आकज्जत ब्राह्मण कश्चित स्वर्गलोकादरिंदम ब्रह्मलोकाच्च दुर्धर्ष सो अस्माभिः पूजितो अभवत् अस्माभिः परिपृष्टश्च यदाह भरतर्षभ दिव्येन विधिना पार्थ तच्छुड़ुष्वा विचारयन्। शत्रुदमन, एक दिन की बात है, एक दुर्धर्ष ब्राह्मण ब्रह्मलोक से उतरकर स्वर्गलोक में होते हुए मेरे यहाँ आए। मैंने उनकी विधिवत पूजा की और मोक्ष धर्म के विषय में प्रश्न किया। भरत श्रेष्ठ, मेरे प्रश्न का उन्होंने सुंदर विधि से उत्तर दिया। पार्थ, वही मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, कोई अन्यथा विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण उवाच, मोक्ष धर्मम समाश्रित्य कृष्ण यन्माम प्रच्छता भूतानामनुकम्पार्थं यन्मोहच्छेदनं विभो तत् ते अहं संप्रवक्ष्यामि यथा वन मधुसूदन शृणुष्वा वहितो भूत्वा गदतो माम माधव। ब्राह्मण ने कहा, श्री कृष्ण, मधुसूदन, तुमने सब प्राणियों पर कृपा करके उनके मोह का नाश करने के लिए जो मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाला प्रश्न किया है, उसका मैं यथावत उत्तर दे रहा हूँ। प्रभु, माधव, सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो। कश्चिद विप्रस्तपो युक्त काश्यपो धर्मवित्तम आससाद द्विजम कंचिद धर्माणामा गतागमम गतागते सुबहुषो ज्ञान विज्ञान पारगम लोकतत्वार्थ कुशलम ज्ञातार्थम सुख दुखयोः जाति मरण तत्वज्ञम कोविदम पाप पुण्ययोः दृष्टार मुच्च नीचानाम कर्म भिर देहिनाम गतिम। प्राचीन समय में काश्यप नाम के एक धर्मज्ञ और तपस्वी ब्राह्मण किसी सिद्ध महर्षि के पास गए, जो धर्म के विषय में शास्त्र के संपूर्ण रहस्यों को जानने वाले, भूत और भविष्य के ज्ञान विज्ञान में प्रवीण, लोक तत्व के ज्ञान में कुशल, सुख दुख के रहस्य को समझने वाले, जन्म मृत्यु के तत्वज्ञ, पाप पुण्य के ज्ञाता और ऊंच नीच प्राणियों को कर्मानुसार प्राप्त होने वाली गति के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। चरंतम मुक्त वत्सिद्धम प्रशांतम संयतेन्द्रियम दीप्यमानम श्रिया ब्राह्मया क्रममाणम च सर्वशः अंतर्धान गतिज्ञम च श्रुत्वा तत्वेन काश्यपः तथैवांतरहितैः सिद्ध्यैर्यान्तं चक्रधरैः सह संभाषमाणबेकान्ते समासीनं च तैः सह यद्रच्छया च गच्छन्तम् असक्तम् पवनम यथा। वे मुक्त की भांति विचरने वाले सिद्ध शांतचित्त जितेंद्रिय ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान सर्वत्र घूमने वाले और अंतर्धान विद्या के ज्ञाता थे। अदृश्य रहने वाले चक्रधारी सिद्धों के साथ वे विचरते बातचीत करते और उन्हीं के साथ एकांत में बैठते थे। जैसे वायु कहीं आसक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, उसी तरह वे सर्वत्र अनासक्त भाव से स्वच्छंदता पूर्वक विचरा करते थे। महर्षि काश्यप उनकी उपर्युक्त महिमा सुनकर ही उनके पास गए थे। तम समासाद्य मेधावी स तदा त्विज सत्तमः चरणौ धर्म कामौ अस्य तपस्वी सुसमाहितः प्रतिपेद यथा न्यायम दृष्ट्वा तन्महदभुतम् विस्मितश्चाद्भुतम् दृष्ट्वा काश्यपस्तद द्विजोत्तमम् परिचारेण महता गुरुं तं पर्यतोषयत् उपपन्नं च तत्सर्वे श्रुतचारित्र संयुतं भावे नातोषयच्चैनं गुरुवृत्तया परन्तपः। निकट जाकर उन मेधावी तपस्वी धर्माभिलाषी और एकाग्र चित्त महर्षि ने न्यायानुसार उन सिद्ध महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। वे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और बड़े अद्भुत संत थे। उनमें सब प्रकार की योग्यता थी। वे शास्त्र के ज्ञाता और सच्चरित्र थे। उनका दर्शन करके काश्यप को बड़ा विस्मय हुआ। वे उन्हें गुरु मानकर उनकी सेवा में लग गए और अपनी शुश्रूषा गुरु भक्ति तथा श्रद्धा भाव के द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्मा को संतुष्ट कर लिया। तस्मै तुष्टः स शिष्याय प्रसन्नो वाक्यम ब्रवीत सिद्धिम पराम भी प्रेक्ष शृणु मत्तो जनार्दन। जनार्दन अपने शिष्य काश्यप के ऊपर प्रसन्न होकर उन सिद्ध महर्षि ने परासिद्धि के संबंध में विचार करके जो उपदेश किया उसे बताता हूँ, सुनो। सिद्ध उवाच विविधैः कर्मभिस्तात् पुण्ययोगैश्च केवलैः गच्छन्तीह गतिं मर्त्या देवलोके च संस्थितम्। सिद्ध ने कहा, तात कश्यप, मनुष्य नाना प्रकार के शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके केवल पुण्य के संयोग से इस लोक में उत्तम फल और देवलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। न क्वचित सुखमत्यंतम न क्वचिच्छाश्वती स्थितिः स्थानाच्च महतो भ्रंशो दुख लब्धात् पुनः पुनः। जीव को कहीं भी अत्यंत सुख नहीं मिलता, किसी भी लोक में वह सदा नहीं रहने पाता। तपस्या आदि के द्वारा कितने ही कष्ट सहकर बड़े से बड़े स्थान को क्यों न प्राप्त किया जाए, वहाँ से भी बार बार नीचे आना ही पड़ता है। अशुभागतयः प्राप्ताः कष्टा में पाप सेवनात् काम मन्यु परितेन तृष्णया मोहितेन च। मैंने काम क्रोध से युक्त और तृष्णा से मोहित होकर अनेकों बार पाप किए हैं और उनके सेवन के फल स्वरूप घोर कष्ट देने वाली अशुभ गतियों को भोगा है। पुनः पुनश्च मरणम जन्म चैव पुनः पुनः आहारा विविधा भुक्ता पीता नाना विधा स्तनाः। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु का क्लेश उठाया है। तरह तरह के आहार ग्रहण किए और अनेक स्तनों का दूध पिया है। मातरो विविधा दृष्टा पितरश्च पृथक विदा सुखानी च विचित्राणी दुखानी च मयानघ। अनघ, बहुत से पिता और भांति भांति की माताएं देखी हैं, विचित्र विचित्र सुख दुखों का अनुभव किया है। प्रियैर विवासो बहुशः संवासश्चा प्रियैः सह धननाशश्च संप्राप्तो लब्ध्वा दुखेन तद धनम्। कितनी ही बार मुझसे प्रियजनों का वियोग और अप्रियजनों का संयोग हुआ है। जिस धन को मैंने बहुत कष्ट सहकर कमाया था वह मेरे देखते देखते नष्ट हो गया। अवमानाः सुकष्टाश्च राजतः स्वजनात् तथा शारीरा मानसा वापी वेदना भ्रश दारुणाः। राजा और स्वजनों की ओर से मुझे कई बार बड़े बड़े कष्ट और अपमान उठाने पड़े हैं। तन और मन की अत्यंत भयंकर वेदनाएं सहनी पड़ी हैं। प्राप्ता विमान नाश्चोग्रा वद बांधाश्च दारुणाः पतनम निरये चैव यातनाश्च यमक्षये। मैंने अनेक बार घोर अपमान प्राणदंड और कड़ी कैद की सजाएं भोगी हैं, मुझे नरक में गिरना और यमलोक में मिलने वाली यातनाओं को सहना पड़ा है। जरा योग रोगाश्च सततम व्यसनानि च भूरिशः लोके अस्मिन्ननु भूतानि द्वंद्वजानि भ्रशं मया। इस लोक में जन्म लेकर मैंने बारंबार बुढ़ापा, रोग, व्यसन और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के प्रचुर दुख सदा ही भोगे हैं। ततः कदाचिन्निर्वेदान् निराकाराश्रितेन च लोकतंत्रं परित्यक्तं दुखार्तेन भ्रशं मया। इस प्रकार बारंबार क्लेश उठाने से एक दिन मेरे मन में बड़ा खेद हुआ और मैंने दुखों से घबराकर निराकार परमात्मा की शरण ली तथा समस्त लोक व्यवहार का परित्याग कर दिया। लोके अस्मिन् ननु भूया हमिमं मार्ग मनुतिष्ठतः ततः सिद्धिरियं प्राप्ता प्रासादात्मनो मया। इस लोक में अनुभव के पश्चात मैंने इस मार्ग का अवलंबन किया है और अब परमात्मा की कृपा से मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है। नाहं पुनि रिहागंता लोका ना लोक याम्यहं आसिद्धेरा प्रजा सर्गादात्मनो अपि गताः शुभाः। अब मैं पुनः इस संसार में नहीं आऊँगा जब तक यह सृष्टि कायम रहेगी और जब तक मेरी मुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपनी और दूसरे प्राणियों की शुभ गति का अवलोकन करूँगा। उपलब्धा द्विज श्रेष्ठ तथेयम सिद्धिरुत्तमा इतः परम गमिष्यामि ततः परतरम पुनः ब्रह्मणः पदम व्यक्तम माते अभूदत्र संशयः नाहं पुनरे हागंता मर्त्यलोकं परंतप। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली है, इसके बाद मैं उत्तम लोक में जाऊंगा, फिर उससे भी परम उत्कृष्ट सत्यलोक में जा पहुंचूंगा और क्रमशः अव्यक्त ब्रह्म पद यानी मोक्ष को प्राप्त कर लूँगा। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले काश्यप, अब मैं पुनः इस मर्त्यलोक में नहीं आऊँगा। प्रीतो अस्मीते महाप्राज्ञ ब्रूहि किं करवाणि ते यदि सुरूपपन्नस्त्वं तस्य कालो अयम आगतः। महाप्राज्ञ, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूँ। तुम जिस वस्तु को पाने की इच्छा से मेरे पास आए हो उसके प्राप्त होने का यह समय आ गया है। अभिजाने च तदहम यदर्थम मामुपागतः अचिरात तो गमिष्यामि तेनाहम त्वाम चुदम। तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है इसे मैं जानता हूँ और शीघ्र ही यहाँ से चला जाऊँगा, इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हें प्रश्न करने के लिए प्रेरित किया है। भृशं प्रीतोऽस्मि भवतश्चारित्रेण विचक्षण परिप्रच्छस्व कुशलं भाषेयं तत्त्वेप्सितम्। विद्वन, तुम्हारे उत्तम आचरण से मुझे बड़ा संतोष है। तुम अपने कल्याण की बात पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दूंगा। बहुमन्ये च ते बुद्धिं भृशं संपूजयामि च येनाहं भवता बुद्धो मेधावी ह्यसि काश्यप। काश्यप, मैं तुम्हारी बुद्धि की सराहना करता हूँ और उसे बहुत आदर देता हूँ। तुमने मुझे पहचान लिया है, इसी से कहता हूँ कि तुम बड़े बुद्धिमान हो। इति श्री महाभारते आश्वमेधिके पर्वणि उत्तर गीतायाम प्रथमो अध्याय। दूसरा अध्याय, काश्यप के प्रश्नों के उत्तर में सिद्ध महात्मा द्वारा जीव की विविध गतियों का वर्णन। वासुदेव उवाच, ततस्तस्योपसंग्रह्य पादौ प्रश्नान सुदुर्वचान पप्रच्छतांश धर्मान सप्राह धर्मभृतां वरः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ काश्यप ने उन सिद्ध महात्मा के दोनों पैर पकड़कर, जिनका उत्तर कठिनाई से दिया जा सके, ऐसे बहुत से धर्मयुक्त प्रश्न पूछे। काश्यप उवाच, कथम शरीरम च्यवते कथम चैवोपपद्यते कथम कष्टाश्च संसारात संसरण परिमुच्यते। काश्यप ने पूछा, महात्मन, यह शरीर किस प्रकार गिर जाता है, फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है, संसारी जीव किस तरह इस दुख में संसार से मुक्त होता है। आत्मा च प्रकृतिम मुक्त्वा तत् शरीरम विमुच्यति शरीर रदतश्च निर्मुक्तः कथम अन्यत् प्रपद्यते। जीवात्मा प्रकृति यानी मूल विद्या और उससे उत्पन्न होने वाले शरीर का कैसे त्याग करता है और शरीर से छूटकर दूसरे में वह किस प्रकार प्रवेश करता है। कथम शुभाशुभे चायम कर्मणि स्वकृते नरः उपभुंक्ते क्व वा कर्म विदेह स्यावतिष्ठते। मनुष्य अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल कैसे भोगता है और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं। ब्राह्मण उवाच एवं संचोदितः सिद्धः प्रसन्नांस्तान प्रत्यभाषत आनुपूर्व्येण वार्ष्णेय तन्मे निगदतः श्रृणु। ब्राह्मण कहते हैं वृष्णि नंदन श्री कृष्ण काश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महात्मा ने उनके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देना आरंभ किया, वह मैं बता रहा हूँ सुनिए। सिद्ध उवाच आयु कीर्ति कराणी हयानि कृत्यानि सेवते शरीर ग्रहणे यस्मिन् स्तेषु क्षीणेषु सर्वशः आयुक्षय परितात्मा विपरीतानि सेवते बुद्धिर् व्यावर्तते चास्य विनाशे प्रत्युपस्थिते। सिद्ध ने कहा काश्यप मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाशकाल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। सत्वम बलम च कालम च विदित्वा चात्मनस्तथा अतिवेल मुह पाश्नाति स्वविरुद्धान्य नात्मवान। वह अपने सत्व यानी धैर्य बल और अनुकूल समय को जानकर भी मन पर अधिकार न होने के कारण असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। यदाय मति कष्टानि सर्वान्युपनिषेवते अत्यर्थमपि वा भुंक्ते न वा भुंक्ते कदाचन। अत्यंत हानि पहुँचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं वह उन सबका सेवन करता है। कभी तो बहुत अधिक खा लेता है कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता है। दुष्टान्न मिषपानम च यन दन्योन्य विरोधि च गुरु चाप्यमितं भुंक्ते नाति जीर्ण अपि वा पुनः। कभी दूषित खाद्य अन्न पान को भी ग्रहण कर लेता है कभी एक दूसरे से विरुद्ध गुण वाले पदार्थों को एक साथ खा लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रा में खा जाता है। कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाता कि दोबारा भोजन कर लेता है। व्यायाम मति मात्रम च व्यवायम चोपसेवते सततम कर्म लाभाद वा प्राप्तम वेगम विधारयेत। अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है सदा काम करने के लोभ से मलमूत्र के वेग को रोके रखता है। रसाभियुक्तमन्नम वा दिवा स्वप्नम च सेवते अपक्वा नागते काले स्वयं दोषान प्रकोपयेत। रसीला अन्न खाता और दिन में सोता है तथा कभी कभी खाए हुए अन्न के पचने के पहले असमय में भोजन करके स्वयं ही अपने शरीर में स्थित वात पित्त आदि दोषों को कुपित कर देता है। स्वदोष कोपनाद रोगम लभते मरणांतिकम अपि बोध बंधनादीनी परितानी व्यवस्यति। उन दोषों के कुपित होने से वह अपने लिए प्राणनाशक रोगों को बुला लेता है अथवा फांसी लगाने या जल में डूबने आदि शास्त्र विरुद्ध उपायों का आश्रय लेता है। तस्य तैह कारणैह जन्तोः शरीरं च्यवते तदा जीवितं प्रोच्यमानं तद् यथा वधूपधारय। इन्हीं सब कारणों से जीव का शरीर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो जीव का जीवन बताया जाता है उसे अच्छी तरह समझ लो। ऊष्मा प्रकुपितः काये तीव्र वायु समीरितः शरीर मनु पर्यत्य सर्वान प्राणान ऋणद्धिवई। शरीर में तीव्र वायु से प्रेरित हो पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है और वह शरीर में फैलकर समस्त प्राणों की गति को रोक देता है। अत्यर्थम बलवान ऊष्मा शरीरे परिकोपितः भिन्नत्ति जीवस्थानानि मर्माणि विद्धि तत्वतः। इस शरीर में कुपित होकर अत्यंत प्रबल हुआ पित्त जीव के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर देता है, इस बात को ठीक समझो। ततः सवेदनः सद्यो जीवः प्रच्यवते क्षरात् शरीरम त्यजते जंतुश्छिद्यमानेषु मर्मसु। जब मर्म स्थान छिन्न भिन्न होने लगते हैं तब वेदना से व्यथित हुआ जीव तत्काल इस जड़ शरीर से निकल जाता है, उस शरीर को सदा के लिए त्याग देता है। वेदना भी है परितात्मा तद विद्धि तुज सत्तम जाति मरण संविघ्नाः सततम सर्वजंतवः। द्विज श्रेष्ठ, मृत्यु काल में जीव का तन मन वेदना से व्यथित होता है, इस बात को भली भांति जान लो। इस तरह संसार के सभी प्राणी सदा जन्म और मरण से उद्विग्न रहते हैं। दृश्यन्ते संत्य जन्तश्च शरीराणि द्विजर्षभ गर्भ संक्रमणे चापि मर्मणा मति सर्पणे तादृशीमेव लभते वेदनां मानवः पुनः भिन्न संधिरथ क्लेद मद्भिः स लभते नरः। विप्रवर, सभी जीव अपने शरीर का त्याग करते देखे जाते हैं। गर्भ में मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भ से नीचे गिरते समय भी वैसी ही वेदना का अनुभव करता है। मृत्यु काल में जीवों के शरीर की संधियां टूटने लगती हैं और जन्म के समय वह गर्भस्थ जल से भींग कर अत्यंत व्याकुल हो उठता है। यथा पंचसु भूतेषु संभूतत्वं नयच्छति शैत्यात् प्रकुपितः काये तीव्र वायु समीरितः यः स पंचसु भूतेषु प्राणापाने व्यवस्थितः स गच्छन्त्यूर्ध्वगमो वायुः कृच्छान् मुक्त्वा शरीरिणः। अन्य प्रकार की तीव्र वायु से प्रेरित हो शरीर में सर्दी से कुपित हुई जो वायु पांचों भूतों में प्राण और अपान के स्थान में स्थित है, वही पंचभूतों के संघात का नाश करती है तथा वह देहधारियों को बड़े कष्ट से त्याग कर ऊर्ध्वलोक को चली जाती है। शरीरम च जहात्येवं निरुच्छ्वासश्च दृश्यते स निरुष्मा निरुच्छ्वासो निःश्रीको हतचेतनः ब्रह्मणा संपरित्यक्तो मृत इत्युच्यते नरैः। इस प्रकार जब जीव शरीर का त्याग करता है तब प्राणियों का शरीर उच्छ्वासहीन दिखाई देता है, उसमें गर्मी उच्छ्वास शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती। इस तरह जीवात्मा से परित्यक्त उस शरीर को लोग मरा हुआ कहते हैं। स्त्रोतो भिर्यैर विजानाति इंद्रियार्थं शरीर भ्रत तैरेव न विजानाति प्राणानाहार संभवान तत्रैव कुरुते काये यह सजीवः सनातनः। देहधारी जीव जिन इंद्रियों के द्वारा रूप रस आदि विषयों का अनुभव करता है उनके द्वारा वह भोजन से परिपुष्ट होने वाले प्राणों को नहीं जान पाता। इस शरीर के भीतर रहकर जो कार्य करता है वह सनातन जीव है। यथा यद्यद् भवेत युक्तम सन्निपाते क्वचित क्वचित तत्नन् मर्म विजानीह शास्त्र दृष्टम ही तत तथा। कहीं कहीं संधि स्थानों में जो जो अंग संयुक्त होता है उसको तुम मर्म समझो, क्योंकि शास्त्र में मर्म स्थान का ऐसा ही लक्षण देखा गया है। तेषु मर्मसु भिन्नेषु ततः स समुदीरयन आविश्य हृदयम जंतुः सत्वम चाशु ऋणधिवई। उन मर्म स्थानों संधियों के विलग होने पर वायु ऊपर को उठती हुई प्राणी के हृदय में प्रविष्ट हो शीघ्र ही उसकी बुद्धि को अवरुद्ध कर लेती है। ततः सचेतनो जंतुर्नाभिजानाति किंचन तमसा संवृत ज्ञानः संवृतेष्वेव मर्मसु। सजीवो निरधिष्ठानश्चाल्यते मातरिश्वना। तब अंतकाल उपस्थित होने पर प्राणी सचेतन होने पर भी कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि तम यानी अविद्या के द्वारा उसकी ज्ञान शक्ति आवृत हो जाती है, मर्म स्थान भी अवरुद्ध हो जाते हैं। उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है। ततः सतम बहुच्छ्वासम भृशमुच्छ्वस्य दारुणम निष्क्रामान कंपत्यन याशु तच्छरीरम चेतनम। तब वह जीवात्मा बारंबार भयंकर एवं लंबी सांस छोड़कर बाहर निकलने लगता है। उस समय सहसा इस जड़ शरीर को कंपित कर देता है। स जीव प्रच्युत कायात कर्मभिः स्वैः समावृतः अभितः स्वैः शुभैः पुण्यैः पापैः वाप्युपपद्यते। शरीर से अलग होने पर यह जीव अपने किए हुए शुभ कार्य, पुण्य अथवा अशुभ कार्य, पाप कर्मों द्वारा सब ओर से घिरा रहता है। ब्राह्मणा ज्ञान संपन्ना यथा वच्छ्रुत निश्चया इतरम कृत पुण्यम वा तम बिजानंती रक्षणैः। जिन्होंने वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का यथावत अध्ययन किया है, वे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा यह जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव पापी। यथांधकारे खदोत्यम लीयमानम ततस्ततः चक्षुषमन्तः प्रपश्यन्ति तथा च ज्ञानचक्षुषः पश्यन्त्येवं विधं सिद्धा जीवं दिव्येन चक्षुषा च्यमन्तं जायमानं च योनिं चानुप्रवेशितम्। जिस तरह आँख वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उगते बुझते खद्योत को देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञान नेत्र वाले सिद्ध पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से जन्मते मरते तथा गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं। तस्य स्थानानि दृष्टानि त्रिविधानि शास्त्रतः कर्म भूमिरयं भूमिर्यत्र तिष्ठन्ति जन्तवः। शास्त्र के अनुसार जीव के तीन प्रकार के स्थान देखे गए हैं, मृत्युलोक, स्वर्गलोक और नरक। यह मर्त्यलोक की भूमि जहाँ बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है। ततः शुभाशुभम कृत्वा लभन्ते सर्वदेहिनः यही वोच्चा वचान भोगान प्राप्नुवन्ति स्वकर्म भीह। अतः यहाँ शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य उसके फल स्वरूप अपने कर्मों के अनुसार अच्छे बुरे भोग प्राप्त करते हैं। यही वाशुभ कर्माणः कर्म भीर निरयम गताः अवाग गतिरयम कष्टा यत्र पच्यन्ति मानवाः तस्मात् सुर दुर्लभो मोक्षो रक्षश्चात्मा ततो भ्रशम्। यही पाप करने वाले मानव अपने कर्मों के अनुसार नरक में पड़ते हैं। यह जीव की अधोगति है जो घोर कष्ट देने वाली है। इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरक अग्नि में पकाए जाते हैं। उससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है। अतः पाप कर्म से दूर रहकर अपने को नरक से बचाए रखने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। ऊर्ध्वं तु जन्तवो गत्वा येषु स्थानेषु अवस्थिताः कीर्त्यमानानि तानि तत्त्वतः सन्निबोधमे। स्वर्ग आदि के ऊर्ध्व लोकों को जाकर प्राणी जिन स्थानों में निवास करते हैं उनका यहाँ वर्णन किया जाता है। इस विषय को यथार्थ रूप से मुझसे सुनो। तच्छ्रुत्वा नैष्ठिकीं बुद्धिं बुद्धयेथाः कर्म निश्चयम् तारारूपाणि सर्वाणि यत्रै तच्च चंद्रमंडलम् यत्र विभ्राजते लोके स्वभासा सूर्यमंडलम् स्थानान्ये तानि जानीहि तेनानां पुण्यकर्मणां। इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नैष्ठिकी बुद्धि प्राप्त होगी। जहाँ ये समस्त तारे हैं, जहाँ वह चंद्रमंडल प्रकाशित होता है और जहाँ सूर्यमंडल जगत में अपनी प्रभा से उद्भासित हो रहा है, ये सबके सब पुण्यकर्मा पुरुषों के स्थान हैं। ऐसा जानो, पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकों में जाकर अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। कर्मक्षयाच्च ते सर्वे च्यवन्ते वै पुनः पुनः तत्रापि च विशेषो अस्ति दिवे नीचोच्च मध्यमः। जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब वे वहाँ से नीचे गिरते हैं। इस प्रकार बारंबार उनका आवागमन होता रहता है। स्वर्ग में भी उत्तम मध्यम और अधम का भेद रहता है। न च तत्रापि संतोषो दृष्ट्वा दीप्ततराम दृश्यम् इत्येता गतयः सर्वाः पृथक्ते समुदीरिताः। वहाँ भी दूसरों का अपने से बहुत अधिक दीप्तिमान तेज एवं ऐश्वर्य देखकर मन में संतोष नहीं होता है। इस प्रकार जीव की इन सभी गतियों का मैंने तुम्हारे समक्ष पृथक पृथक वर्णन किया है। उपपत्तिम तु वक्ष्यामि गर्भस्या हमतः परम तथा तन्मे निगततः शृणु श्वावहितो द्विज। अब मैं यह बतलाऊंगा कि जीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है। ब्राह्मण, तुम एकाग्रचित्त होकर मेरे मुख से इस विषय का वर्णन सुनो। इति श्री महाभारते आश्वमेधिके पर्वणि उत्तर गीतायाम द्वितीयो अध्यायः। जय श्री राम।